خراج ثانیہ سیالکوٹ میں ہوا، اور میں ویسے اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا، سچی بات ہے اس طرح کے واقعات جس تواتر سے ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، اب وہ دکھ بھی اتنا نہیں ہوتا، اتنی حساسیت بھی نہیں ہوتی، اور گفتگو کرتے ہیں ہم، اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، نوحہ گری بھی ہوتی ہے، لیکن پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، مسئلے کا سد باب، مسئلے کا حل، جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں مذہب کے نام پر اور بالخصوص توہین رسالت کے نام پہ، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارا دانشور طبقہ ہے، اہل رائے ہیں، وہ اس پر بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں، اور پھر میں عرض کروں گا کہ سچی بات یہی ہے کہ ان کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے اگر کوئی بات کر دی تو کون سی ہماری بات کو، کون سے نقطے کو، کون سے جملے کو توہین کا رنگ دے کے لوگوں کو، موب کو موبلائز کیا جائے گا اور ہمیں بھی پتھر مار کے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں ذرا آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کھل کے، اور تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں تو صحیح کہ سچی بات کیا ہے۔ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، آپ کی نظر میں اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ کون سے عناصر ہیں، کون سے طبقے ہیں جو اس پورے کشت و خون کے بازار کو گرم کرنے کا محرک اول ہیں، اور ان کی وجہ سے آج سوسائٹی یہاں تک پہنچ گئی ہے؟
یہ بڑا دلخراش ثانیہ ہے، ہم اس پر اپنے غم کا جتنا بھی اظہار کریں کم ہے، لیکن آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ غم کا اظہار تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اور ہر حساس آدمی یہ غم محسوس بھی کرتا ہے۔ اصلی بات وہی ہے کہ تجزیہ کر کے دیکھا جائے کہ ہم اس حالت کو پہنچے کیسے ہیں، اور اس میں بنیادی سوال وہی ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی۔ تو میرے نزدیک اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، اور جنہوں نے لوگوں کے اندر یہ جذبات پیدا کیے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے، ان کے مقبرے بنائے ہیں، ان کی داستانیں لوگوں کو سنائی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں پرانے بزرگوں کے قصے، آج کے قصے، اس وقت کی داستانیں جب ہندوستان متحدہ تھا، کیا کیا واقعات ہوئے، وہ جیسے سنائے جاتے ہیں اور جس طرح کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اس میں ایک سادہ نو مسلمان جو چیزوں کا اس طرح تجزیہ نہیں کر سکتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تو گویا دنیا اور آخرت کی سعادت ہے میرے لیے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی دانست میں کسی نے کوئی اہانت کر دی ہے، کوئی گستاخی کر دی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے، تو اس کے لیے تو یہ گویا ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، گویا ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باقاعدہ جماعت کو منظم کیا گیا جس کا مقصد وجود یہی ہے، یعنی اس میں جو نعرہ دیا گیا ہے، آپ اس پہ غور کریں، وہ کیا نعرہ ہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ناموس اور آپ کی عزت پر حملہ ہوا ہے، تو آپ بیتاب ہوں گے نا اس معاملے میں کہ کوئی اس کا بدلہ لے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔
اچھا،
آپ اس پہ غور کریں کہ یہ جو لبیک یا رسول اللہ ہے، اس کی جب آپ معنویت واضح کریں گے اور اس پر تقریریں کریں گے، اور جیسی تقریریں ہوتی رہی ہیں، وہ میں نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کے دل میں کیا چیز پیدا ہوگی، کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ یعنی ہم بھی اگر علم و عقل کو فراموش کر کے تھوڑی دیر تک ان تقریروں میں بیٹھ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکیں جس طریقے سے وہ بات بیان کی جاتی ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے مذہبی لوگ نعرے لگواتے تھے، تو آپ کو معلوم ہے کوئی تکبیر کا نعرہ، کوئی رسالت کا نعرہ، یہی عام طور پر ہوتے تھے۔ اس میں جو نعرہ بنایا گیا وہ کیا ہے؟ من سب نبین فقتلو، من سب نبین فقتلو، یعنی اوپر اسٹیج سے پہلا جملہ بولا جاتا ہے اور اس کے جواب میں سارا مجمع دوسرا جملہ بولتا ہے۔ اب یہ چند لفظوں کا جملہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے بولنے والے جانتے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اس طرح کی جماعتیں جب بنیں گی، یہ نعرے جب لگائے جائیں گے، ان کے اجتماعات جب جہاں تہاں ہوں گے، مسجدوں میں اسی مضمون کی تقریریں ہوں گی، لوگوں کو اسی بات کو بتا کے ایمان کے معیار کے طور پر پیش کیا جائے گا، तो मुझे बताइए कि फिर क्या हासिल निकलेगा। यही निकलेगा ना, यानी हर आदमी इसी को अपनी सादत समझेगा। तो गाजी इल्मदीन के वाक़यात से लेकर आज तक जो कुछ इस मामले में हुआ है, आप उसकी तारीख पर एक नज़र डाल लीजिए। ये अभी मुमताज़ कादरी का वाक़या तो कल का वाक़या है। आपने फरमाया कि जिसका जी चाहेगा जिस चीज़ को चाहेगा तोहीन करार दे देगा। ये हकीकत है कि जो अल्फाज कहे थे सलमान तासीर साहब ने, वो तो किसी जाविये से भी तोहीन नहीं बन सकते थे। लेकिन आम आदमी के हाथ में जब आपने ये चीज़ दे दी, तो फिर वही मुकदमा करने वाला है, वही मुनसिफ है, वही फ़ैसला सुनाता है। तो उसने फ़ैसला सुना दिया, फिर क्या हुआ? यानी आपकी अदालतों ने उसको कत्ल करार देकर सज़ा दी, लेकिन इस तबके फ़िक्र ने उसको किस तरीके से लिया? आपके बड़े बड़े लोग किस तरीके से वहाँ हाज़िर होते रहे? इस वक्त भी क्या सूरत हाल है? तो वो तकरीरें जो मुमताज़ कादरी की शान में की जाती हैं, वो तकरीरें जो उस मकबरे पर की जाती हैं, वो तकरीरें जो इस तरह की जमातों और तंजीमों की इज्तमात में की जाती हैं, और वो तकरीरें के जो चलिए इससे ज़रा कमतर से ही इनकी ताईद में की जाती हैं, वो सब की सब मिलकर जो फ़ज़ा बनाती हैं, वो यही फ़ज़ा है। यानी अगर ये नतीजा ना निकले तो इस पर ताज्जुब होना चाहिए। तो अव्वलीन ज़िम्मेदारी तो उन्हीं लोगों पर आयद होती है, उसके बाद उन लोगों की ज़िम्मेदारी है जिन्होंने यहाँ ये कवानीन बनाए। आप इन कवानीन का जायज़ा लें। मैं बरसों से ये बता चुका हूँ और किसी के पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं है कि इस वक्त जो ये कानून बनाया गया है, तौहीन रिसालत का कानून कहिए या इहानत मज़हब का कानून कहिए, ये कुरान के भी ख़िलाफ़ है, ये हदीस के भी ख़िलाफ़ है, ये फ़िक़्ह इस्लामी के भी ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और ये बात अहले इल्म जानते हैं, वो इसका एतराफ़ करते हैं कि ये इसके ख़िलाफ़ है। ये एतराफ़ तहरीरी तौर पर हो चुका है, बड़े उलमा ने किया है। लेकिन इस कानून को तब्दील किया जाए, इसकी इस्लाह की जाए, इसके लिए कोई तैयार नहीं होता। तो मेरे नज़दीक इस पर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि जब इस तरह का आप कानून बनाएंगे कि आपकी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ निकला है या कोई बात आपने कही है, अब ये गोया दूसरों का काम है कि वो फ़ैसला करें। ना आपके पास इसका मौका है कि आपकी वज़ाहत कबूल की जाए, ना इसका मौका है आपके पास कि चलिए गलती किसी इंसान से हो गई वो रुजू कर ले, तौबा कर ले। हर हाल में उसको गिरफ्त में आना है, और गोया इसको हद बना दिया गया कि ये तो अल्लाह का हुक्म है और इसको नाफिज़ होना है। दरा हल है कि इस कानून की कोई एक चीज़ भी अल्लाह का हुक्म नहीं थी, ना है, ना कोई इसको साबित कर सकता। तो ज़ाहिर है कि इस कानून से भी एक पैगाम मिलता है सोसाइटी को। यानी ये कानून बताता है कि असल मुजरिम तो यही आदमी है जिसने ये काम किया है, और फिर उसके बाद जब असल मुजरिम है तो ये तावील भी हमने बड़े उलमा की ज़ुबान से सुनी कि है तो ये गलत कि कोई आदमी अपने तौर पर कानून को हाथ में ले ले, लेकिन अगर उसने ले लिया है और बाद में साबित हो गया कि वाकईतन कानून की खिलाफवर्जी हुई थी, तो फिर जाहिर है कि उसको क्या कहा जा सकता है। यानी वो वाजिबुल कत्ल था, चलिए अगर उसको फांसी नहीं दी गई और अदालत से फ़ैसला नहीं हुआ तो इस आदमी ने कर डाला। तो ये दूसरी बड़ी चीज़, यानी इस तरह के कवानीन जिस माशरे में भी बनाए जाएंगे, वहाँ वो एक मैसेज देंगे, एक पैगाम देंगे सोसाइटी को, और वो पैगाम इसी तरीके से नीचे पहुँचेगा और आम लोग उसको इसी तरीके से लेंगे भी। जो कानून हमारे यहाँ, अगर आप फिक्र को भी सामने रख लें, इस मामले में हमारे फुकहा ने बयान किया है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मेरे इख्तलाफ के बावजूद बहुत माकूल है। अगर फिक्र हनफी के मुताबिक भी इस मौजूदा कानून में तरमीम कर दी जाए, मेरी या आपकी राय पर नहीं, फिक्र हनफी के मुताबिक, जिसके मानने वाले करोड़ों की तादाद में है और ज़्यादा तादाद उन्हीं की है, जमहूरी उसूल पर भी आपने कोई कानून साजी करनी है तो उसमें ज़ाहिर है कि फुकाए अहनाफी की राय पर कानून साजी होनी चाहिए, जब तक कि ये नुक्ता नज़र अक्सरियत की राय में तब्दील ना हो जाए। उसको देख के कानून साजी कर दें या तब्दीली कर दें तो इस कानून की ये खराबी दूर हो जाए, इसका ये मैसेज ख़त्म हो जाए। इसके तहत जो लोग, यानी ये तो है ना कि मार दिया, जो पकड़े जाते हैं उनकी कौन सी ज़िंदगी बाकी रहती है? कौन सा जज नीचे उनका मुकदमा सुनने के लिए तैयार होता है? अब वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार ही करेंगे। जेलों में बरसों वो पड़े रहते हैं, कोई वकील उनका मुकदमा लेने के लिए तैयार नहीं होता, और बारहा ये होता है कि वो फिर वतन छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरी बड़ी ज़िम्मेदारी इस कानून पर और इसके बनाने वालों पर आयद होती है। तीसरी बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे नज़दीक उन दस्तूर शिकन बंदूकों पर आयद होती है कि जो हमेशा से इस तरह के लोगों को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही। वो इस्तेमाल हमने अपनी आँखों से देखा है कि किस तरह से सियासी मकासद और बाज़ स्ट्रेटजिक मफादात हैं उनको सामने रख के पहले एक गिरोह को इस्तेमाल किया गया, फिर दूसरे को किया गया, फिर तीसरे को किया गया। अभी लोग भूले नहीं हैं वो मनाजिर जो फैज़ाबाद में सामने आए थे और जिस पर हमारे एक जलीलुल कदर जज ने, काजी ने बहुत उम्दा फ़ैसला लिखकर भी तवज्जो दिलाई थी। काश उसको पढ़ा जाता, उसको समझा जाता और उस फैसले के मुताबिक अपने रवैये की इस्लाह की जाती। लेकिन आप जानते हैं कि बंदूकों का रुख खुद जज की जानिब हो गया, उस काजी की जानिब हो गया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तीसरी बड़ी ज़िम्मेदारी उन लोगों पर आयद होती है कि जो पस पर्दा रहकर इस मुल्क पर हुकूमत करते और हुकूमत के ख्वाब देखते और ये समझते हैं कि उनकी हुकूमत चूँकि लोगों की ताईद से तो नहीं चल सकती, तो इसलिए इस तरह के गिरोह ही हैं जिनको वो अपनी मकसद बरारी का ज़रिया बना सकते हैं। और आखिर में वो सब सियासतदान और रहनुमा और दानश्वर भी इसके मुजरिम हैं कि जो इस मामले में मुदाहनत बरतते हैं, अगर और मगर के बग़ैर इस तरह के मामलात की मजम्मत नहीं करते और उसके बाद कहीं जनाजे पढ़ने के लिए चले जाते हैं इस तरह के लोगों के, कहीं तहसीन की मजालिस में शरीक होते हैं, कहीं फूल ले कर पहुँच जाते हैं, तो ये सब के सब लोग भी यकसा मुजरिम हैं। ये जो कत्ल है, इस तरह का कत्ल जैसे कि और जैसा ये दर्द अंगेज़ कत्ल हुआ है, जैसे इससे पहले मिशाल खान का हुआ था और भी बाज़ मिसालें हैं, तो ये सब जितने हैं ये इनके खाते में लिखे गए हैं और क़यामत में जवाब भी होना पड़ेगा इन सब तबकात को कि इन्होंने यहाँ ये क्या रवायत डाली है। ये काश अंदाज़ा कर सकते कि अगर ये इसका हदफ बने होते तो इनके क्या जज्बात होते। तो इसलिए मेरे नज़दीक ये ज़रूरी है कि हम इसका शऊर पैदा करें, इस मामले में जो कुछ दीन का हुक्म है सफाई के साथ बयान करें। ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले तो आसमान पर होते हैं और लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है जो आखिरी दर्जे में गलत है और जिसका इर्तकाब जो शख्स भी करता है वो ज़मीन पर अल्लाह के नज़म को चैलेंज करता है। ये महज किसी इंसान के ख़िलाफ़ इकदाम नहीं है, ये खुदा के अहकाम के ख़िलाफ़ इकदाम है। छोटा सा कदम नहीं है, ये कुरान का सरी ऐलान है इस मामले में कि किसी आदमी को भी किसी की जान माल आबरू के ख़िलाफ़ इस तरह कोई इकदाम करने का हक़ नहीं है। मुझे भी इस पे अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए और मैं उन सब लोगों को भी यही कहता हूँ कि वो अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि उनका तर्ज अमल इस मामले में क्या रहा है।
बहुत ही तफसील से आपने इस पहलू पर राय का इजहार किया। चंद ज़िम्मी चीज़ें मैं पूछना चाहता हूँ। एक नई चीज़ जो सामने आई वो ये कि पहले ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तानी समाज के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ बुनियाद, कोई ना कोई जिसको आप कहते हैं मुहर्रिक वहाँ मौजूद होता था। किसी शख्स से कोई गलती हो गई, किसी शख्स ने कोई इस तरह की बात कर दी जिससे कोई दो इम्कान जुमानी लोग पैदा कर सकते थे। जो नया तर्ज अमल सामने आया उसमें तो ये है कि जी ज़ाती मकसद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए किसी ने कर्ज़ा देना था, कोई बेचारी ने कोई आपसे कोई तल्ख कलामी हो गई उसमें उठा के तोहीन का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये जो समाज की गिरावट है, ये क्या लगता है आपको कि ये जो कुछ पीछे हुआ है उसका बाय प्रोडक्ट है, उसका लाजमा है कि जब आप लोगों को इस तरह मोटिवेट कर देंगे जज्बात में तो फिर वो दीन को भी भूल जाएंगे, मज़हब को भी भूल जाएंगे, अखलाक को भी भूल जाएंगे और फिर इस तरीके से दीन और इस्लाम को इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मकासद को हासिल करेंगे?
बड़ा आसान है ना। यानी अगर आप को कोई शिकायत है और बिल्कुल जायज़ शिकायत है और आप उसका इजहार करते हैं या कोई इस तरह का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, तो कोई पुलिस आएगी, कोई बात सुनी जाएगी, कोई पंचायत में मामला जाएगा, लोग आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह का बावेला करते हैं उठ के कि ये आनत हो गई और ये पोस्टर फाड़ दिया गया और ये मामला हुआ और ये कुरान के और आग थे, तो बस एक आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हुजूम है वो तो पहले से चार्ज हुआ हुआ है, उसको तकरीरों ने और उसको गुफ्तगुओं ने और उसको फतवों ने और उसको नारों ने इस मुकाम तक पहुँचाया हुआ है। और वो एक बड़ी तादाद है लोगों की, हर गली हर मोहल्ले में आपको मिल जाते हैं वो आपकी आवाज़ पर लबैक कहते हैं। तो अब देखिए कि ना मुकदमा करने की ज़रूरत नहीं, ना पुलिस के पास जाना है, ना वकील करना है, ना अपनी दादरसी के लिए कोई और इकदाम करना है। आपने फैसला किया, फैसले का फैसला भी हो गया और लोगों ने आपका साथ दिया और उसी वक्त पे आपने वो इंसाफ हासिल कर लिया। यानी मारने वाले के बकौल वो तो यही समझता है ना कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही थी। यहाँ पर भी आप देखिए इतना बड़ा हादसा हुआ है और अब पुलिस बता रही है कि कुछ लोग उन साहब से तंग थे, वो डिसिप्लिन कायम करते थे या जिस तरीके से भी मामलात को चला रहे थे। थोड़ी देर के लिए मान लें कि उन्होंने कोई गलती की थी, तो अगर गलती को गलती की हैसियत से मौजू बनाया जाता तो ये मकसद इतनी जल्दी तो नहीं हासिल हो सकता था। और फिर ये कि ये मकसद भी हासिल हो गया और उसके साथ आप गाजी भी बन गए और आपने वह तारीख में भी अपना नाम लिखवा लिया। और अगर कुछ लोगों ने देखा कि कोई इकदाम हुकूमत या रियासत या अदालत कर रही है तो मकबरे की ज़मीन भी हाजिर है और गुंबद भी हाजिर है और बनाने वाले भी मौजूद हैं और उसके बाद करामतों की दास्तान है।
आगे बढ़ाते हैं हम सब, एक और अहम पहलू ज़रा मुझे बताइएगा। हम ये जानते हैं, अब ये बात तो बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, आलमी सच्चाई बन चुकी है, बच्चा बच्चा जानता है। हमारे यहाँ इस तरह आपने ज़िक्र किया कि जो ताकत के सरचश्मे हैं वो कैसे इस्तेमाल करते हैं इस तरह के मजहबी ग्रोहों को अपने सियासी और अपने जो खत्ते के मफादात हैं उनकी। सवाल एक आम आदमी के जहन में ये आता है कि ये पहले भी किया था इस्तेमाल, जहरी बात है, अफगानिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, उसका एक काउंटर, एक जिसको आप कहते हैं बैकफायर हुआ कि यही नज़रियाती लोग उठे और फिर उन्होंने उन्हीं के ख़िलाफ़ इकदाम किया। सवाल मेरा आपसे ये है कि ये दोनों जो तबकात हैं, यानी ये पहला तबका जब इस्तेमाल करता है तो इसको ये तजर्बा नहीं हासिल हुआ अब तक कि भाई जब भी हम इन मजहबी लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो ये कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं है कि कल हम इनको टिशू पेपर की तरह फेंक देंगे, कल ये हमारी पल्ले पड़ेंगे, तो ये फिर बार बार क्यों करते हैं ये काम?
इसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया था, अगर आपने सुना हो तो, वो ये है कि क्या हो जाएगा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम कंट्रोल कर लेंगे। अब उसमें पूछने वाला ने पूछा कि आपके कंट्रोल करने तक हज़ारों लोग मर चुके होंगे, जैसे कि हुआ, यानी औरतें मरीं, बच्चे मरे, हमारे बच्चों को एक मदरसे में, स्कूल में ज़िबा किया गया, मस्जिदों में बम फाड़े गए। तो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए कोई जंग होती है तो उसमें कोलेट्रल डैमेज तो होता है ना, ये जवाब दिया गया है उनकी जानिब से। तो इस वजह से वो ये समझते हैं कि हमारा कंट्रोल हो जाएगा, हमारे पास बड़ी ताकत है और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मकासद भी हासिल कर लेंगे, बाद में कोई मामला होगा तो कंट्रोल भी कर लेंगे। उसमें अगर आम लोग मरते हैं तो इससे क्या ख़ास फ़र्क पड़ता है, मर गए, आखिर अपने मकासद को हासिल करने के लिए जब कौमें आगे बढ़ती हैं तो उसमें कुछ कुर्बानी तो पेश करना ही पड़ती है। तो ये ज़हनियत है जिसका ज़हूर इसमें होता है।
ठीक, अच्छा आपसे ये बताइएगा कि कानून में तो ये चीज़ें मौजूद हैं, हम ये देख रहे हैं कुछ रीसेंट नए कानून भी सामने आए, मसलन अब बात हो रही है, कोई बिल भी पेश किया जा रहा है, मुसवदा तैयार है कि जी निकाह नामे से पहले भी ख़त्म नबूवत का एक फॉर्म होगा और उस पर आपने साइन करने हैं, अंगूठा लगाना है और गवाही देनी है और कस्में खानी है। इसी तरीके से किताब में आपने मसलन नाम लिखना है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो आप लिखेंगे खातम नबीन है पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लिखेंगे, नहीं लिखा तो किताब नहीं छपेगी। तो ये और भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये हमारी सोसाइटी यानी दुनिया जो है वो आगे बढ़ती है और ये तरक्की है माकूस है, वो कानून तो जो मौजूद था अब उसके बाद वो भी तो आगे बच्चे दे रहे हैं तो उसका क्या होगा फिर?
ऐसे ही होता है, यानी ये तो नहीं होता कि कोई गलती बांझ रह जाती है। जब भी आप इतनी बड़ी हमाकत, इतनी बड़ी गलती करेंगे जैसे कि हमारे यहाँ इस तरह के कानून बनाने वालों ने की है, तो उसके बाद असल में ये उसके अंडे बच्चे हैं, यानी ये बांझ नहीं रहती गलती कभी, वो इसी तरीके से जनती चली जाती है। और ये अंदाज़ा कीजिए कि जो लोग इस तरह के मुसवदात पेश कर रहे हैं वो ना तहरीर के हुस्न से वाकिफ़ हैं, ना लिखा कैसे जाता है उससे वाकिफ़ हैं, ना उन्हें अंदाज़ा है कि इस तरीके से हलफनामे दाखिल करने के नतीजे में कौमी ज़हनियत क्या बनती है, ना वो ये समझ रहे हैं कि एक नेशनल स्टेट इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत में है इसकी जड़ों में वो किस तरह का बारूद भर रहे हैं, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं, यानी उन्हें ये पता ही नहीं है कि जब कुछ लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसमें अल्फाज का क्या तवाज़ुन बरकरार रखना होता है, कौन सी चीज़ उसमें कही जाती है, कौन सी नहीं कही जाती। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था एक मौलवी साहब, बड़े मौलवियों में से हैं वो, मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी की तफ़ीमुल कुरान से तनकीद के लिए एक इक्तिबास पढ़ रहे थे। तो उसमें ज़ाहिर है कि एक अच्छा लिखने वाला, मौलाना सैयद अबुल्ला साहब मौदूदी तो एक साहिब तर्ज इंशा परदाज़ है, तो अच्छा लिखने वाला ये देखता है कि कहाँ पर आपने कोई इस तरह के कलिमात लिखने हैं, कहाँ पर उनको हज़्फ़ करना है, कहाँ अत्फ़ व मातूफ़ में उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जहाँ जहाँ पढ़ते थे तो साथ साथ बताते जाते थे कि देखिए यहाँ ये नहीं लिखा, यहाँ ये नहीं लिखा, ये फलां हज़रत के साथ ये बयान नहीं किया, ये बयान नहीं किया। आप सुन सकते हैं उसको, तो उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या ज़हनियत है कि जो इल्म की सतह पर पहले नुमाया हुई और अब उसके बाद सियासतदानों की सतह पर भी। सियासतदान ये समझते हैं कि अब चूँकि ये कुव्वतें मुनज़्ज़म हो रही हैं, इनको सियासी हैसियत भी हासिल हो रही है, तो हम आगे बढ़कर अपने लिए इनकी हमदर्दियाँ भी हासिल करें। यानी जो कुछ बोया गया है उसको अब काटने के मौके के ऊपर तो लोग आएंगे ना। आपने देखा होगा कि जब फसल कटती है तो हमारे देहात में कैसे गिर्दोपेश से लोग आते हैं कि अपना अपना हिस्सा उसमें से ले लें। तो हर आदमी अपना हिस्सा लेता है। ये देखा नहीं आपने कि एक जमात जो चार दिन पहले एक दहशतगर्द जमात थी और कलदम थी और उसके ऊपर पाबंदी लगाने की करारदादें आ रही थी, उसके बाद वो एक सियासी जमात बन गई और जो लोग हुक्मरान थे वो फूल लेकर पहुंच गए ताकि ये बता दें कि इससे पहले कि कोई और आपकी वफादारी का दम भरे, हम ही अपने आप को पेश कर रहे हैं।
बिल्कुल, आप की तरफ बढ़ते हैं गाम साहब, कुछ आखिरी कलिमात। ये तो हुआ तज्जिया सूरत हाल का, हकायक आपने बड़े खोल खोल के बयान किए। अच्छा, लोग एक चीज़ और भी कहते हैं गाम साहब, जब हम पाकिस्तान में लोगों से बात करते हैं कि जी आप भी ये सच्चाई का अलम बुलंद करें, आप भी कुछ दो चार बातें कहें, देखें ज़्यादती आप देख रहे हैं, तो वो ये कहते हैं भाई आप लोग तो गांधी साहब मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो तो ये बात कर सकते हैं, हम कैसे ये बात करेंगे। तो वे आउट क्या है, यानी हल क्या है, वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, इतने शदीद दबाव है, तो वो फिर क्या करें सूरत हाल में?
पहले तो ये बताइए कि जो कुछ मैंने अभी कहा है, जब मैं मुल्क में था तो क्या इससे मुख्तलिफ कोई बात मैंने की थी? और मेरे मुल्क से निकलने की वजह क्या बनी थी? मेरी ये बातें ही बनी थी। तो जो कुछ उस वक्त कहने की ज़रूरत थी उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। मेरा एहसास है कि अगर लोग हिम्मत करेंगे और वो ये बात कहेंगे, अपनी हिफाजत का ज़रूर बंदोबस्त करें, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की तौफीक शामिल हल होगी, अल्लाह की मदद शामिल हल होगी। ऐसा नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी कौम 22 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं कि वो सब के सब इस राव में बह गए हैं। उनमें सोचने समझने वाले लोग मौजूद होते हैं, सिर्फ ये कि जब इस तरह की फ़ज़ा पैदा कर दी जाए तो लोग खामोश हो जाते हैं, अपनी हिफाजत के पेश नज़र खामोश हो जाते हैं। उन्हें खौफ होता है कि हमने अगर ये सच्ची बात कही तो मालूम नहीं हमारे साथ क्या होगा। लेकिन जब एक बुलंद आहंग बात सामने आ जाती है तो उसके नतीजे में हौसला बढ़ता है लोगों के अंदर। ये सब कहना है, हमारी ज़िम्मेदारी इसके सिवा है भी क्या कि हम कहें, लोगों के शऊर को बुलंद करें और ये बताएं कि इन कवानीन में भी तब्दीली आनी चाहिए, ये रवैये भी बदलने चाहिए। और इस तरह की तनजीमें और जमातें जो इस तरह के नामों और नारों के साथ बने, उनका कोई जवाब नहीं है, उनको आप कैसे सियासी जमात के तौर पर पेश कर सकते हैं?
वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। सियालकोट का एक दिलखराश सानहा, उसके असबाब, ज़िम्मेदार और हल क्या है, इस सब पर आपसे गुफ्तगू हुई। कल दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, अब तक आपका बहुत शुक्रिया।